मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 26 जुलाई 2017 के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात पर आऊं, आप सबको एक सूचना देनी है, और सूचना यह है फ्रेंड्स कि आप सब जानते हैं कि जो एकेडमी है वो अभी अक्टूबर नवंबर में 15 दिन की क्लासेस ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जो अक्सर हम करते रहते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और आपको ध्यान भी होगा कि लेक्चर के लास्ट में मैं ऐसे स्टूडेंट्स का वेलकम भी करता हूं जो इन क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अभी तक जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे थे उन्हें फीस में 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा था। अब जो सूचना है वो ये है फ्रेंड्स कि अब यह जो डिस्काउंट है जल्दी ही खत्म होने जा रहा है, यानी कि अभी खत्म नहीं किया गया है लेकिन जल्दी ही इसे खत्म कर दिया जाएगा। तो इससे पहले कि इस डिस्काउंट को समाप्त किया जाए, आप सबके लिए एक छोटी सी सूचना देने के लिए मुझसे कहा गया है, और वह यह कि आप सब यदि क्लास अटेंड करने के जरा भी इच्छुक हैं तो बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी आप सब रजिस्ट्रेशन करा करके इस जो 1000 रुपए की छूट है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस सूचना के बाद अब मैं आपको विषय बता दूं कि आज हमारे पास न्यूज के तहत बहुत ज्यादा बात करने को नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दो मुद्दों पर बात करेंगे। तो जितना भी वक्त हमारे पास बच जाएगा उसमें हम ऑर्डिनेंस पर बात करेंगे, अध्यादेश पर जो राष्ट्रपति जारी करते हैं। और आपको ध्यान होगा कि प्रणब मुखर्जी जी ने सेंट्रल हॉल में अध्यादेश के बारे में एक वक्तव्य दिया था। मैं अपने आज के एनालिसिस में उनके उस वक्तव्य को ही आधार बनाऊंगा ताकि आपको ये पता लग सके कि कैसे अपनी बात बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में केंद्रित होकर के बिना इधर उधर भटके की जाती है, जो आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आइए अब मैं न्यूज पर आता हूं। कल हमारे 14वें राष्ट्रपति जी ने शपथ ले ली, और आपने देखा सुना भी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा। मित्र, राष्ट्रपति जी ने जो पहली अपना जो पहला भाषण दिया वो ठीक है, उन्होंने जो दूसरी बातें कही, विविधताओं वाला देश है और हमारी पुरानी परंपराओं का हमें सम्मान करना है, आधुनिकता को भी लेकर चलना है, जो हमारी जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसमें भारत को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, ये सारी रचनात्मक बातें उन्होंने कही है। इसके साथ ही साथ अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने जो तीन बातें कही हैं वो मुझे सबसे महत्वपूर्ण मालूम होती हैं, जो खासकर वैश्विक समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, उधर उन्होंने ध्यान दिलाया है। और खासकर जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पर्यावरण से भी यह जुड़ा हुआ है। उन्होंने तीन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया था मित्रों, और उन्होंने कहा था कि इन तीनों समस्याओं के बारे में भारत जो कदम उठा रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसके लिए पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। भारत यूं कह लीजिए कि इन तीनों इश्यूज के मामले में एक तरह से वर्ल्ड लीडर की भूमिका में है, उन्होंने ये बात कही। वो जो तीन इश्यू हैं आप जान लीजिए, और इन तीनों इश्यूज पर आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपर्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी तो होनी चाहिए, और वो सतही तैयारी नहीं हो, आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। उसमें पहला उन्होंने नाम लिया था फ्रेंड्स आतंकवाद का, टेररिज्म। आप देख रहे हैं कि भारत तो उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी ही है, आतंकवाद की, ये जो आतंकवाद है इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा, और लगातार भारत जहां भी वो विश्व मंच से मिलता है विश्व आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, लोगों से मदद मांगता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो बड़ी प्रोमिनेंटली जोरदार तरीके से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज रखते हैं। दूसरी उन्होंने बात कही मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस आतंकवाद से भी है, क्योंकि उनका जो फाइनेंस होता है, उनको जो पैसा मिलता है उसमें इसकी भूमिका भी होती है। फिर इससे और भी हो जाते हैं, हथियारों की तस्करी होती है, फिर ड्रग्स की तस्करी होती है, जो माफिया गिरोह है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को आप केवल एक सिस्टम मान करके ना चलें कि एक इकोनॉमी का एक सिस्टम है, बल्कि उस सिस्टम के जो दुष्प्रभाव हैं उसके क्या रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, किन किन चीजों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसे भी आपको एक बहुआयामी तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इसे एक आर्थिक गतिविधि मान करके, एक अवैधानिक गतिविधि मान करके और आप राहत की सांस ले लें। तीसरी जो उन्होंने बात कही है फ्रेंड्स, वो नो डाउट क्लाइमेट चेंज की है, जलवायु परिवर्तन की है। और भारत को सच पूछे तो अब जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़े नेतृत्वकारी भूमिका मिल गई है, क्योंकि जो पेरिस सम्मेलन हुआ था आपको मालूम है उसमें भारत साझेदार रहा है, साइन किए हैं भारत ने, अमेरिका अब उससे अलग हो गया है। ट्रंप जी के राष्ट्रपति बनने के बाद आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने कह दिया, साफ कह दिया कि हम पेरिस जलवायु सम्मेलन से अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब भारत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और भारत उसी तरह का नेतृत्व भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वैश्विक मुद्दे हैं, इन पर अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए और इन तीनों के लिए आपको अपने रजिस्टर में अलग अलग पेज भी निर्धारित कर लेने चाहिए कि जब भी इन पर आपको कोई अच्छा फैक्ट मिलता है, कोई अच्छा डेटा मिलता है, कोई रिपोर्ट मिलती है, तो आप बकायदे उसे वहां नोट कर ले। दोस्तों, जो अगली जो खबर है वो थोड़ी सी दुखद खबर है और वो है प्रोफेसर यशपाल के निधन की खबर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और फिर से एक बार वही जो हमने यूआर राव के बारे में कही थी कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, जो प्रोफेसर यशपाल हैं और मिस्टर राव, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। दोनों वैज्ञानिक थे। आप जानते हैं कि राव उतने लोकप्रिय वैज्ञानिक नहीं थे, मतलब बहुत उच्च स्तरीय वैज्ञानिक थे, लेकिन उनका जो नाम है वो घर घर में नहीं है। प्रोफेसर यशपाल उस तरह के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम घर घर में है, और उसका रीजन है ना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना करके मैं किसी को बड़ा और छोटा नहीं बता रहा हूं। आपने भी प्रोफेसर यशपाल का नाम सुना होगा। उसका कारण यह है कि प्रोफेसर यशपाल की जो सबसे बड़ी जो भूमिका रही है, जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो ये है कि उन्होंने विज्ञान के फार्मूलों को, विज्ञान के तौर तरीकों को बिल्कुल सरल तरीके से हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश की है, एकदम सरल तरीके से। मुझे मालूम है दोस्तों कि 90-92 के आसपास दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता था, द टर्निंग पॉइंट, ये मैं देखता था उस समय, और उसमें प्रोफेसर यशपाल विज्ञान के इतने कठिन कठिन सूत्रों को, कठिन कठिन और जटिल प्रश्नों के न केवल समाधान देते थे, इतने आसान तरीके से समझाते बताते थे कि आश्चर्य होता था और लगता था कि विज्ञान इतना सरल है। जैसे देखिए, मैथमेटिक्स और साइंस, इन दोनों को लेकर हम लोगों के दिमाग में एक हवा सा बना हुआ है कि नहीं, ये सब बहुत कठिन विषय है। हम लोगों के समय में तो होता यह था कि जब हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोगों को 8वीं के बाद एक ब्रांच चुन लेनी पड़ती थी, अर्थ से था हम लोग के समय में, 8वीं के बाद आप साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे, अपना ब्रांच निर्धारित करना पड़ता था। तो सीधा होता था कि जो अच्छे स्टूडेंट है, जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, वो आंख मूंद कर साइंस ले लेते थे। साइंस में अब उनको मैथ्स में जाना है, इंजीनियरिंग में या डॉक्टर बायोलॉजी में जाना है, वो हो जाता था। और जो इसके बाद जो सेकेंड रैंक के जो स्टूडेंट होते थे वो कॉमर्स ले लेते थे, उस समय कॉमर्स सब्जेक्ट पॉपुलर नहीं था, और जो बचे खुचे होते थे वो आर्ट्स ले लेते थे। मतलब अगर स्टूडेंट ब्रिलियंट है तो उसे साइंस ही लेना है, ये उसकी ब्रिलियंसी का प्रमाण होता था। और उसका कारण यह कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ही साइंस को समझ सकता है। प्रोफेसर यशपाल ने इस मिथ को तोड़ा, ये उनका पहला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि वो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो यूनिवर्स की जो कॉस्मिक रेज होती है, कॉस्मिक रेज पर उन्होंने काम किया था। मैं थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है कि प्रोफेसर यशपाल पर एक छोटा सा नोट लिखने को आ जाए, और वैसे भी आपको मालूम भी होना चाहिए। दोस्तों, इनका जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अक्सर आपको सुनाई पड़ता होगा बस्ते का बोझ, ये अखबारों में आपको पढ़ने को मिलता होगा। जब भी भारत में एजुकेशन, पॉलिसी की बात होती है, शिक्षा में सुधार की बात होती है, तो हमेशा ये कोट किया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी पीठ पर जो बस्ता लदा होता है जिसमें दुनिया भर की किताबें ठूसी होती हैं मोटी मोटी, उसके बोझ को कम किया जाए। ये जो शब्द दिया हुआ है बस्ते का बोझ, ये शब्द दिया हुआ है सच पूछे तो प्रोफेसर यशपाल का ही। दोस्त प्रोफेसर यशपाल शिक्षाविद भी थे, मतलब साइंटिस्ट तो थे ही, उससे बड़े मुझे कहीं वो शिक्षाविद भी मालूम पड़ते हैं। 1992 में सरकार ने, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति शिक्षा पर सलाह देने के लिए, उसके जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर यशपाल बनाए गए थे। 1993 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इनकी ये जो रिपोर्ट है ये इस रूप में पॉपुलर हुई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ के बिना शिक्षा। इन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में भी अपनी बात कही थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी थी, और फिर हमारा जो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन इसके बारे में भी उन्होंने अपनी बातें कही, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन भी रहे, मतलब ये हमारे देश की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था है, तो उनके पास बहुत बड़ा विजन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजन होने के साथ साथ उनके पास भारतीयता और वैश्विक समझ बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त समझ थी। मित्रों आप जब इनको देखेंगे टीवी पर कभी तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे घर के कोई बड़े बूढ़े बात कर रहे हैं, बहुत ही सरल सहज अद्भुत व्यक्ति थे, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिसको उनके दर्शन करने का मौका मिला है और प्रत्यक्ष रूप से उन्हें सुनने का भी मौका मिला है। अब देखिए उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन के तहत जो अपनी कुछ बातें कही थी वो थोड़ी सी आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप कोट कर सके। और वैसे भी शिक्षा नीति और हमारे शिक्षा की समस्या पर आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आप मेंस के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। इन्होंने जो दो चार पांच बातें कही थी वो मैं आपके सामने बस केवल रख रहा हूं, और मुझे लगता नहीं है कि आज हम अध्यादेश पर बात कर सकेंगे, कोई बात नहीं कल करेंगे, कल नहीं तो और किसी दिन करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। उन्होंने एक बात कही थी कि बस्ते का बोझ कम होकर किया जाना चाहिए, ये तो बात उन्होंने कही। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि बच्चों को होमवर्क दिया जाए, इसके पक्ष में वो नहीं थे। उनका यह कहना था कि स्कूल में आप पढ़ाइए और बच्चों को घर में खुला छोड़िए, उनके व्यक्तित्व का एक स्वतंत्र विकास होने दीजिए। इसी तरीके से उन्होंने ट्यूशन और कोचिंग का जबरदस्त विरोध किया था, इसके तो बहुत बड़े विरोधी थे कि बच्चे इस घर में स्कूल में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, क्या मतलब हुआ। तो ये जो पैरेलल सिस्टम है, इस पैरेलल सिस्टम के समानांतर जो प्रणाली है उसका बहुत ही उसके प्रखर विरोधी थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारी परीक्षा की जो प्रणाली है ये करवाती क्या है कि आपने किताब में पढ़ा, इन्फॉर्मेशन पढ़ ली और उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, कॉपी में ज्यों का त्यों उतार आए। बोले इससे जो क्रिएटिविटी है स्टूडेंट की वो खत्म हो जाती है, विषय को वो समझ ही नहीं पाता है, कुछ दिनों के बाद वो उनको भूल जाता है और उसकी जिंदगी से वो तथ्य हमेशा के लिए वो ज्ञान गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने एजुकेशन जो हमारी जो एग्जामिनेशन जो प्रणाली है उसके परिवर्तन की बात कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो जायलेस है, आनंद रहित है, पढ़ाने का कोई आनंद ही नहीं लिया जाता, न पढ़ाने का तौर तरीका आता है। और इसी से जुड़ी हुई उन्होंने बात कही थी कि जो हमारा जो सिलेबस है एक तो बहुत ज्यादा है, दुनिया भर की बातें ठूस दी गई हैं बेवजह की, और जो ठूसी भी गई है वो इतने जटिल तरीके से लिखी गई है जैसे कि कोई बड़े विद्वत्ता की बात की जा रही हो, तो इसके कारण जो पूरी की पूरी जो हमारी पढ़ाई है वो जायलेस हो गई है, उसमें आनंद का अभाव हो गया है। इस यही कारण है कि लड़कों को मजा नहीं आता है, लड़के समझ भी नहीं पाते, और भी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के हैं वो बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के अलग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो प्राइमरी मिडिल एजुकेशन है उसके बारे में यह रिपोर्ट दी थी जो यशपाल रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। 1992-93 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ जो बातें कही हैं वो सच पूछे तो हमारे अभी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी ने अपने विदाई भाषण में कहा, वो बातें यशपाल पहले रख चुके थे और लगातार ये बात कही भी जाती है कि जो हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो भी एक तरह से रिप्रोड्यूसिंग द इन्फॉर्मेशन का ही है। जबकि जो यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्स शब्द है, देखिए पहले हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल ये हमारे विद्या के घर है, इसके बाद फिर हम महाविद्यालय में पहुंच जाते हैं, कॉलेज पहुंच महाविद्यालय, यानी कि अब वो जो विद्यालय था वो बड़ा बन गया है। और इसके बाद हम पहुंचते हैं विश्वविद्यालय में। तो महा क्या है? क्या केवल बिल्डिंग बड़ी हो गई है, या विश्वविद्यालय क्या है कि अब उसकी बिल्डिंग महा से भी बड़ी बन गई है? ये बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे दिमाग का आकार है, ज्ञान का भंडार है। पहले हम छोटी सी सीमा में थे, इसके बाद हम बड़ी सीमा में पहुंचे, और अब तो हम विश्व यूनिवर्स की सीमा में पहुंच गए हैं। यानी कि अब हम अपनी तरफ से सोचेंगे, धीरे धीरे हम किताबों के दायरे को तोड़कर अपना विस्तार करते जा रहे हैं। जैसे कि आपका जो गुब्बारा है वो फूलता जाता है, गुब्बारे में हवा भरते चले जाइए और गुब्बारा फैलता चला जाएगा। तो हम तो प्राइमरी से अपने अंदर हवा ही भर रहे हैं, तो उसे विश्व तक फैलना है तो माइंड जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां नए नए आइडियाज के लोग आ रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये जो आने वाले लोग हैं ये स्टूडेंट भी हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर्स भी हैं। और इस इंटरेक्शन के बाद जो हमारी न्यू रियलिटीज हैं, जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके प्रति फिर हमारा एक विजन डेवलप होगा, एक क्रिएटिव विजन डेवलप होगा। उन्होंने क्रिएटिव विजन शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि रचनात्मक दृष्टि विकसित होगी। ये उन्होंने हमारे हायर एजुकेशन के बारे में कही थी। तो मित्रों, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा, आज के मुख्य विषय के रूप में आप प्रोफेसर यशपाल को ही ले लें, क्योंकि यशपाल जी ने जो रिपोर्ट दी थी वह हमारे प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, उन दोनों के लिए आज भी उतनी ही मायने रखती है। अब अनफॉर्चुनेट बात ये जरूर है कि हम उनके आदर्शों के अनुकूल, उनके सिफारिशों के अनुकूल अपनी शिक्षा प्रणाली को तब्दील नहीं कर पाए हैं। हाँ, एक्सेप्ट हम जरूर करते हैं, जब भी शिक्षा की बात होगी तो ये बातें अवश्य कही जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से की नहीं जा रही है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैं आज आपको दो बहुत अच्छी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स। एक मृणाल पांडे जी की क्लिपिंग्स है जो महिला खेतिहर के ऊपर है, महिला खेतिहर के ऊपर आपको आर्टिकल्स जनरली पढ़ने को नहीं मिलते, आप इसे जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये वीमन एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, तो एक्सक्लूसिव आर्टिकल है जो बहुत कम आपको शायद पढ़ने को मिलेगा। और एक है फैजान मुस्तफा जी का, एकल व्यवस्था की अपेक्षा शीर्षक से है, ये राष्ट्रीय सहारा में छपा है, ये इंग्लिश में भी ये आर्टिकल छपा था, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी किया है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, खासकर ये प्राइवेसी को लेकर के है, और इसको आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखते हैं फ्रेंड्स। जीवन के अधिकार वगैरह से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। अब आप इसे अपने दो आठ तीन और भी आर्टिकल्स हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। और अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो स्वागत करने का चरण है। मैं स्वागत करता हूं अपने उन पांच नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शैलेश कुमार मिश्रा, आप रीवा मध्य प्रदेश से हैं। आशुतोष तिवारी, आप भी रीवा मध्य प्रदेश से हैं। अभिजीत, आप सोनीपत हरियाणा से हैं। ललित कुमार ध्रुवे, आप बैहर मध्य प्रदेश से हैं। और गणेश कुमार, आप जम्मू से हैं। तो आप सभी पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मित्रों, अब मैं इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।